श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम
पहले के तीन प्रवचनों में हमने तीन विषयों पर चर्चा की। प्रथम प्रवचन में रामचरित मानस का वैशिष्ट्य देखा, दूसरे में तुलसी के राम इस विषय पर विचार व्यक्त किया और तीसरे में परम संत श्री हनुमान इसे अपनी चर्चा का विषय बनाया। आज हम लोग जीव साधक विभीषण पर विचार करने जा रहे हैं। विभीषण जीव है, जीव का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री राम से उनका मिलन होता है। मिलने के लिए जिस प्रक्रिया में से वे गुजरते हैं वह प्रक्रिया उनकी साधना है श्री राम से मिलने की। और चूंकि विभीषण जीव है इसलिए वह साधना जीव की भी साधना बन सकती है। इस दृष्टि से विभीषण और श्री राम के मिलन के प्रसंग पर हम लोग आज विचार करेंगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने विभीषण को जीव का प्रतिनिधि बताया है। यूं कहा है कि विभीषण जीव है, जहां पर उन्होंने यह कहा मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्राम हारी। दशमौली रावण मोह का प्रतिनिधित्व करता है, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, उसका पुत्र मेघनाथ काम का प्रतीक, और वहीं पर विभीषण को जीव का प्रतीक बताया है। विभीषण जीव है, जीव का ईश्वर के साथ नित्य संबंध बना हुआ है। भले ही जीव उस संबंध के संबंध में ज्ञान नहीं रखता, उसे इसका भले ही भान न हो, पर ईश्वर के साथ वह नित्य संबद्ध है ही। गोस्वामी जी प्रतिपादन करते हुए मानस में लिखते हैं,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
यह जो जीव है वह ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर के ही समान वह चैतन्यवान है, अविनाशी है, सहज सुख की खान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चार गुण उन्होंने ईश्वरता के कहे। अविनाशी, चैतन्य, निर्मलत्व और सहज सुख की खान। सहज सुख उसे कहते हैं जहां अपने आनंद के लिए अपने से भिन्न किसी वस्तु की आवश्यकता न हो, इसे सहज सुख कहा जाता है। जहां पर हम अपने सुख के लिए अपने से भिन्न किसी वस्तु पर निर्भर करते हैं वह सहज सुख नहीं है। भोजन से हमें सुख मिलता है, भोजन हमसे भिन्न है इसलिए वह सहज सुख नहीं। पति या पत्नी से हमें सुख मिलता है, पर पति या पत्नी हमसे भिन्न है इसलिए वह सहज सुख नहीं है। पुत्र या कन्या से हमें सुख मिलता है, पर वह सहज सुख नहीं। संसार में जो सुख हमें अपने से भिन्न किसी वस्तु के आश्रय से प्राप्त होता है वह सहज सुख नहीं है, पर जो सुख हमें अपने स्वरूप से प्राप्त होता है, अपने आप ही प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती, उसे सहज सुख कहा है। ईश्वर ऐसे ही सहज सुख की खान है, और यह जीव उस ईश्वर का अंश होने के कारण सहज सुख की खान है। यह चर्चा गोस्वामी जी मानस में करते हैं। तो जो जीव है वह ईश्वर से नित्य संयुक्त है, ईश्वर का अंश है, और इसलिए ईश्वर के गुणों का अधिकारी है। परंतु उसे इसका भान क्यों नहीं होता?
सो माया बस भयबू गोसाई, बधेऊ की रमर कट की नाई, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयमु गोसाई, बंधेऊ की रमर कट की नाई।
बस तोते के समान, बंदर के समान अपने अज्ञान से बंधा है, और इस माया के कारण यह जीव अपने स्वरूप ईश्वर से पृथक अपने को मानता है, और इसीलिए विनाश का अनुभव करता है, जड़ का अचेतन का अनुभव करता है, मल का अनुभव करता है, और दुख का अनुभव करता है। तो यह जो जीव है वह ईश्वर से नित्य संयुक्त है, पर माया के कारण वह अपना अनुभव पृथक करता है। संसार का आकर्षण उसे खींचता रहता है, परंतु भीतर ही भीतर उसे कभी न कभी ईश्वर की सुध आती है, ईश्वर की ओर उसका मन जाता है, यह भी सत्य है। तो यह कहा गया, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जीव ईश्वर से इस प्रकार नित्य संबद्ध है, अज्ञान के कारण वह अपने इस संबंध को भूल गया है, यदि अज्ञान दूर हो जाए तो ईश्वर के प्रति उसी आकर्षण का वह अनुभव करेगा। उसके लिए कैसी साधना करनी पड़ेगी? क्या बहुत कठिन? जीव ईश्वर से मिलित होने के लिए क्या साधना करेगा? क्या बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, हम जितना श्रम इस संसार में अन्य किसी वस्तु को पाने के लिए करते हैं, उतना ही श्रम यदि भगवान को पाने के लिए करें तो भगवान मिल जाते हैं। हरदम वे यही कहा करते हैं और वे एक उदाहरण देते हैं, कितनी तपस्या और कितना श्रम करने से भगवान मिलते हैं। कहते हैं, से वही लखन सियही दखुबी रही, जिमी अविवेके पुरुष शरीरही। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण श्री सीता जी और श्री राम की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी को श्री राम नित्य प्राप्त है। क्यों नित्य प्राप्त है? उनकी सेवा के कारण। लक्ष्मण जी श्री राम की किस प्रकार सेवा करते हैं? इस प्रकार सेवा करते हैं जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। तो भगवान को पाने का समीकरण तुलसी ने रख दिया, हम जितनी तन्मयता के साथ अपने शरीर की सेवा करते हैं, यदि उतनी तन्मयता से भगवान की सेवा कर सकें तो भगवान हमारे लिए नित्य प्राप्त हो जाते हैं। बस यही समीकरण। हम कितनी सेवा करते हैं अपने इस शरीर की, इसको सजाने का कितना ख्याल रखते हैं, और हम कितना श्रम करते हैं इस शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार से ठीक रखने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान को पाने के लिए अरे बस इतना ही श्रम करना पड़ता है, बल्कि शरीर के लिए मनुष्य अधिक श्रम करता है, ईश्वर को पाने के लिए इतने श्रम की भी अपेक्षा नहीं। परंतु जीव क्या करेगी, इस शरीर को सजाने के द्वारा वह भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपभोग ही तो करना चाहता है, और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह शरीर एक साधन है, या तो संसार में सुख की प्राप्ति का साधन बने या भगवान को पाने का साधन बने। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर के द्वारा भगवान का लाभ किया जा सकता है, और लाभ करना ही इस शरीर की सार्थकता है। यह जो हमें देह मन यंत्र मिला है, इसके द्वारा हम भगवान को पाले तो इस देह मन यंत्र की सार्थकता है, परंतु हम इसके द्वारा संसार के भिन्न भिन्न पदार्थ पाने की इच्छा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं। इसीलिए जब एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा गोस्वामी जी महाराज, आप इस शरीर की तुलना यदि किसी वृक्ष से दें तो किस वृक्ष से देंगे? आम्र से देंगे, बबूल के वृक्ष से देंगे, केले के वृक्ष से देंगे, क्योंकि ये वृक्ष भी छाया करते हैं। इस शरीर के माध्यम से भी आप कहते हैं साध्य की प्राप्ति होती है, वृक्ष भी तो अपने को दूसरों के लिए सुखाता है, वृक्ष भी सेवा धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, तो इस शरीर की उपमा आप किस वृक्ष से देंगे? तुलसी ने कहा कि आम से तो नहीं दूंगा, बबूल के वृक्ष से भी नहीं दूंगा, केले के वृक्ष से भी नहीं दूंगा। जिज्ञासु ने पूछा, ऐसा क्यों? तुलसी ने कहा कि आम के पेड़ में एक बाध्यता है, आम्र वृक्ष की यह बाध्यता है कि वह केवल आम का ही फल देता है, आम के पेड़ से आप नींबू का फल नहीं पा सकते। और यही बाध्यता केले के वृक्ष के साथ है। केले का वृक्ष केले का फल ही दे सकेगा, बबूल का वृक्ष बबूल के कांटे ही दे सकेगा। इन वृक्षों की यही बाध्यता है, वे अपने से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं दे सकते। जिज्ञासु ने आश्चर्य में आकर के पूछा, तो फिर आप किस वृक्ष से इस शरीर की उपमा करेंगे? वे कहते हैं काया कल्पवल्ली, कल्प तरु से कल्प वृक्ष से ही इस शरीर की उपमा दी जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कल्प वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे आप बैठ जाए, जो भी कामना करें उस कामना की पूर्ति होती है। शरीर भी ऐसा ही एक वृक्ष है। आप कामना करें कि मुझे आम मिले, वह आम देगा। आप कामना करें कि मुझे केला मिले, वह केला देगा। आप कामना करें कि मुझे विषय भोग मिले, वह विषय भोग प्रदान करेगा। आप कामना करें कि मुझे यश प्राप्त हो, वह यश आपको देगा। आप कामना करें कि मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो, वह भगवान के दर्शन करा देगा। यह अद्भुत कल्प वृक्ष है यह शरीर हमारा, जिस इच्छा की आपके मन में बड़ी जोरों की, मानो वहां पर उदय जिस इच्छा का होता हो, उसी इच्छा की पूर्ति यह शरीर कर देता है। ऐसा यह शरीर है कल्प वृक्ष के समान। और इसीलिए वे कहते हैं कि यह शरीर क्या है? काया कल्पवल्ली। इस काया को, इस शरीर को मैं कल्प वृक्ष कहता हूं। और वे हमारे समक्ष इन तीन भाइयों का उदाहरण रखते हैं। विभीषण जी का चरित्र हमारे समक्ष रख रहे हैं, तो विभीषण का चरित्र रखने के साथ साथ वे यह बताते हैं कि कैसे प्रारंभ तब से करते हैं जब विभीषण साधना करने के लिए गए, तपस्या करने के लिए गए। और एक बड़ी विचित्र बात यह है कि विभीषण जी अकेले तो साधना के लिए नहीं जाते, तीनों भाई तपस्या करने के लिए एक साथ जाते हैं। रावण साथ, कुंभकर्ण साथ है, विभीषण है, ये तीनों के तीनों जाते हैं और एक ही स्थान पर बैठ करके वे तपस्या करते हैं। यह एक बड़ा विलक्षण संकेत है। एक ही स्थान में गए और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ये तीनों भाई बैठ गए तपस्या करने के लिए। रावण यदि यहां बैठा तो कुंभकर्ण यहां बैठा, विभीषण यहां बैठे, और एक ही काल में ये तीनों के तीनों अपनी तपस्या का आरंभ करते हैं। और इन तीनों पर वर देने वाले देवता प्रसन्न होते हैं, शिवजी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। और शिव और ब्रह्मा ये दोनों के दोनों साथ आते हैं और तीनों के पास जाते हैं एक ही काल में। एक ही काल में का अर्थ, पहले रावण के पास गए, फिर कुंभकर्ण के पास गए और फिर विभीषण के पास गए, और तीनों ने अलग अलग वरदान मांगा। इसका मतलब यह है कि यह जो शरीर है कल्प वृक्ष है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसी का निदर्शन करा रहे हैं कि रावण ने इस शरीर रूपी वृक्ष से क्या मांगा, कुंभकर्ण ने क्या मांगा और उसी प्रकार विभीषण ने क्या मांगा। तीनों ने अलग अलग वरदान मांगे और तीनों को अलग अलग फल मिले। एक प्रश्न उठता है कि भगवान शंकर रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो गए, कुंभकर्ण की तपस्या से भी प्रसन्न हो गए, और ये शंकर जी कैसे हैं? पौराणिक कथाओं में हम पढ़ते हैं तो असुरों को भी वरदान देते हैं और देवताओं को भी वरदान देते हैं। तो जब मन कच्चा था, ज्यादा कुछ समझता नहीं था, तो शिवजी पर बड़ा गुस्सा आता था। विचित्र शिव जी हैं, जिसको देखो तब वरदान दे देते हैं और वरदान लेकर के असुर फिर उन्हीं को सताता है, परंतु फिर भी वरदान देना ये छोड़ते नहीं। यह बड़ी विचित्र और अलग मालूम पड़ती थी। जब तक बात समझ में नहीं आती थी ये शंकर जी कैसे हैं जो देवताओं को और असुरों को समान रूप से वरदान देते हैं। कम से कम शंकर जी को किसी प्रकार का विवेक तो करना था, और शंकर जी कोई विवेक नहीं करते। पर उसके पीछे का तत्व क्या है? शंकर जी यदि देवताओं को वरदान देने जाते हैं तो वे असुरों को भी वरदान देने जाते हैं, यदि देवताओं को उनकी तपस्या का फल देते हैं तो असुरों को उनकी तपस्या का फल देते हैं, ऐसा क्यों? तुलसी लिखते हैं, ये शंकर जी क्या है?
अहंकार शिव बुद्धि अज मन सति चित्त महान।
ये जो शंकर जी हैं, ये समष्टि अहंकार के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज, ये जो ब्रह्मा है अज है, ये समस्त बुद्धि के देवता है। यह जो शशि है चंद्रमा है, वह समस्त मन का देवता है। और उसी प्रकार महान है जो विष्णु है, वे समस्त चित्त के देवता है। यह हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं, वेदांत में पढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम यह मानते हैं कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार जैसे प्रत्येक व्यक्ति का है, इसी प्रकार समष्टि में भी वह मन बुद्धि और चित्त और अहंकार है। जैसे व्यक्ति में व्यष्टि में, उसी प्रकार समष्टि में। तो जैसे जीव का अहंकार या व्यष्टि का अहंकार हुआ, पर यदि हम समष्टि के अहंकार का चिंतन करें तो शिव जी उसके देवता है। ठीक इसी प्रकार जब हम व्यष्टि मन का चिंतन करते हैं तब मैं जीव का मन, पर जिस समय हम समष्टि मन का चिंतन करते हैं तो चंद्रमा उसका देवता, जिस समय हम अपनी बुद्धि का व्यष्टि बुद्धि का चिंतन करते हैं तो वह जीव की बुद्धि, जब हम व्यष्टि बुद्धि का चिंतन करते हैं तो वे हैं ब्रह्मा। तो अब ये जो शंकर जी हैं, ये समष्टि अहंकार के देवता हैं। तो जब व्यक्ति कोई कार्य करता है